मुख्य समाचारों में, फेडरल सरकार के विवादास्पद धार्मिक भेदभाव वाले विधेयक का भविष्य अनिश्चित। अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा, भौगोलिक दूरी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया और अमरीका की विचारधारा में बहुत समानता। और भारत में आज से यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। फेडरल सरकार सेनेट में अपने विवादास्पद धार्मिक भेदभाव विधेयक पर बहस करने में विफल रही। कानून का एक संशोधित संस्करण आज सुबह निचले सदन में 10 घंटे की लंबी बहस के बाद पारित हुआ। लेबर क्रॉस बेंच एमपीज और 5 उदारवादियों द्वारा पारित संशोधन धार्मिक स्कूलों को समलैंगिक और ट्रांसजेंडर छात्रों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। लिबरल सांसद ट्रेट जिमरमैन उन लोगों में से एक थे जिन्होंने ये कहते हुए रेंग तोड़ी कि ट्रांसजेंडर बच्चों जैसे कमजोर लोग अधिक सुरक्षा के पात्र हैं।
By supporting amendments to the Sex Discrimination Act to address that problem in the overarching framework of what we can achieve for our educational settings through this religious discrimination bill. So I want to indicate that I will be making the difficult decision to part with my party on some of the amendments. It's an opportunity that I can't let go past. I could not live with myself if I didn't seek to address those issues.
लेकिन फेडरल सरकार और ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन लॉबी सहित प्रमुख हितकारक परिवर्तनों का समर्थन नहीं करते हैं। कानून पर बहस में देरी के लिए सेनेट के वोट का अर्थ है कि इसका भविष्य अब अधर में लटका हुआ है, क्योंकि सेनेट मार्च में फेडरल बजट तक बैठक के लिए वापस नहीं आएगी। उधर एबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि उस समय सरकार ये बिल वापस नहीं लाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फेडरल चुनाव से पहले इसकी वजह से आर्थिक एजेंडा पर कोई प्रभाव पड़े। इस बीच ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन लॉबी के लिए राष्ट्रीय राजनीति निदेशक वेंडी फ्रांसिस का कहना है कि बदली हुई स्थिति के कारण बिल को वापस ले लिया जाना चाहिए। उन्होंने एएपी को बताया कि लॉबी सभी सरकारी सेनेटर्स के संपर्क में है और कहा कि अगर बिल पास हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक स्कूलों के अधिकार काफी कम हो जाएंगे। सुश्री फ्रांसिस का कहना है कि धार्मिक भेदभाव विधेयक को पारित करने के लिए ईसाई स्कूलों के लिए सुरक्षा छीनना बहुत अधिक कीमत है। लेबर ने वृद्ध देखभाल क्षेत्र में फेडरल सरकार की कोविड प्रतिक्रिया पर अपना हमला जारी रखा है। मंत्री रिचर्ड कोलबैक के लिए फिर से त्यागपत्र देने का आह्वान किया है। 25% वेतन वृद्धि की वकालत करने वाले वृद्ध देखभाल कर्मियों ने संसद भवन में लेबर एज्ड केयर प्रवक्ता क्लेयर ओ'नील और विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीज़ी से मुलाकात की। फेडरल सरकार ने इस सप्ताह कोविड-19 संक्रमणों की उच्च दर के कारण वृद्ध देखभाल कर्मचारियों की कमी में सहायता के लिए ऑस्ट्रेलियन रक्षा बल को तैनात किया है। लेबर एज्ड केयर प्रवक्ता क्लेयर ओ'नील का कहना है कि लेबर एडीएफ की सहायता का स्वागत करती है, लेकिन वृद्ध देखभाल वर्कर्स को नौकरी में रखने के लिए वास्तविक वेतन वृद्धि की आवश्यकता होती है।
The government has proposed something of an offensive pay boost to aged care workers. It was about as welcome as a Scott Morrison handshake. And that is because what was offered to these workers was a short-term bonus payment that amounts to less than a dollar extra an hour that runs out right around the time of the next election. I would have thought that sort of political cynicism was beyond even Scott Morrison.
इस बीच क्वींसलैंड सरकार निजी वृद्ध देखभाल घरों में कोविड प्रक्रिया की सहायता के लिए हस्तक्षेप करने की पेशकश बना रही है, क्योंकि वो स्थिति का सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्वींसलैंड की प्रीमियर एनेस्थीसिया पेलिशे का कहना है कि वो राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ इस मुद्दे को उठाएंगी। न्यूजीलैंड में पुलिस ने सरकार की कोविड-19 प्रक्रिया के विरोध में देश की संसद के बाहर डेरा डाले हुए लोगों पर कार्यवाही शुरू कर दी है। द कॉनवॉय 2022 एनजेड ग्रुप कनाडा के इसी तरह के आंदोलन से प्रेरित होकर वैक्सीन जनादेश और कोरोना वायरस प्रतिबंधों को समाप्त करने का आह्वान कर रहा है। न्यूजीलैंड में पिछली 2 रातों से सैकड़ों प्रदर्शनकारी वेलिंगटन में संसद के लॉन में डेरा डाले हुए हैं। संसदीय अध्यक्ष ट्रेवर मलार्ड द्वारा मैदान को बंद करने का दुर्लभ कदम उठाए जाने के बाद पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और कईयों पर अतिक्रमण या बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संसद में पूर्व ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर ग्रेस टेम द्वारा किए गए दावों को संबोधित किया है। ग्रेस टेम का दावा है कि उन पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री की आलोचना न करने का दबाव डाला गया था। बाल यौन शोषण पीड़िता और अधिवक्ता ग्रेस टेम ने बुधवार को नेशनल प्रेस क्लब को दिए एक भाषण में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन के किसी व्यक्ति ने उसे पिछले अगस्त में फोन किया था और उन्हें इस साल के ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से पहले श्री मॉरिसन के बारे में कुछ भी हानिकारक कहने के लिए रोका था, जो फेडरल चुनाव से पहले उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। प्रश्नकाल में श्री मॉरिसन ने कहा कि वो ऐसी किसी भी कार्यवाही के लिए कभी भी किसी को भी अधिकृत नहीं करेंगे।
And at all times have sought to treat Ms. Tame with dignity and respect. Mr. Speaker, the first I became aware of that allegation was during the press club address when it was delivered. Ms. Tame should always be free to speak her mind, in my view, Mr. Speaker, and conduct herself as she chooses. I've made no criticism of Ms. Tame, her statements or her actions. While Ms. Tame has declined to name the individual, I would at least invite her to advise the government which government-funded agency she is referring to.
अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे समान विचारधारा वाले देशों को दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। श्री ब्लिंकन क्वाड की बैठक से पहले मेलबर्न में हैं। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, US, जापान और भारत से बना एक रणनीतिक ब्लॉक है जिसे चीन का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। श्री ब्लिंकन अपनी 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा में आज सुबह मेलबर्न विश्वविद्यालय में छात्रों से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भौगोलिक दूरी के बावजूद जब मूल्यों और हितों की बात आती है तो विचारधारा में बहुत समानता है।
As we're looking out at the things that truly have an effect on all of us, all of our citizens in different ways every day, whether it's a changing climate, whether it's this pandemic that we all continue to live through, whether it's the impact of emerging technologies that are literally shaping our lives, what we know in the United States, half a world away, is that we cannot effectively deal with these challenges alone. Whatever our power, whatever our resources, whatever our capabilities, we simply can't do it.
वित्तीय सलाहकारों ने ऑस्ट्रेलियन संचार और मीडिया प्राधिकरण AMCA का स्पोर्ट्स बेट पर अब तक का सबसे बड़ा $2.5 मिलियन का जुर्माना लगाने का स्वागत किया है। सट्टेबाजी कंपनी अब ग्राहकों को $1.2 मिलियन वापस करने के लिए बाध्य है। एक जांच से पता चला है कि उसने स्पैम कानूनों का उल्लंघन किया था। एक्मा ने पाया कि स्पोर्ट्स बेट ने 37,000 से अधिक उपभोक्ताओं को 1,50,000 से अधिक टैक्स और ईमेल भेजे थे जिन्होंने सदस्यता समाप्त करने का प्रयास किया था और 3,000 से अधिक संदेश भेजे जिनमें सदस्यता समाप्त करने का कोई भी विकल्प नहीं था। वित्तीय परामर्श ऑस्ट्रेलिया के लॉरेन लीवन का कहना है कि जो लोग जुआ खेलने की लत को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें स्पोर्ट्स बेट के संदेशों ने काफी नुकसान पहुंचाया है।
So there are a lot of people who go to bed at night struggling with their gambling, thinking I'm not going to gamble tomorrow morning because it's ruining my life, and the next morning they wake up and there's a spam text sitting there with some sort of marketing offer or inducement. So that causes people to relapse, it causes people to lose more money, and some of those people will be struggling with suicidal thoughts.
भारत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज यानी बृहस्पतिवार 10 फरवरी को 11 जिलों की कुल 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और भारत में पिछले 24 घंटों में नए कोरोना केसों में 6% की कमी आई और 67,084 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 53.72 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में, रूसी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 15 वर्षीय फिगर स्केटर कैमिला वलीवा ने एंजाइना के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। वलीना रूसी ओलंपिक समिति की टुकड़ी का हिस्सा थी जिसने फिगर स्केटिंग टीम स्पर्धा जीती थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा औपचारिक पदक समारोह में 2 बार देरी करने के बाद रिपोर्ट्स आईं जिसमें वलीवा और उसके 5 रूसी साथियों को उनके स्वर्ण पदक के साथ प्रस्तुत किया जाना था। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शुक्रवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। कैनबरा में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। सिडनी में बौछारें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। ब्रिस्बेन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और डार्विन में 1-2 बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।